Normal sound book. Normal design. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivara Dhari. Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yashoda Nandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivara Dhari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol. Gauranga Karuna Karo Dinahina Jane Gauranga Karuna Karo Dina hina jane Mosam patita prabho Nahi tribhuvane Mosam patita prabho nahi tribhuvane Gauranga karuna karo Dina hina jane Dante trina dhori gaura Daki he tomara Dante Trinadhari Gaura डाकी है तुम्हार कृपा कोरी एशो आमार हृदय मंदिर कृपा कोरी एशो आमार हृदय मंदिर गौरांग करुणा करो दीन ही न जाने যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া যদি দয়া না করিবে পতিত দেখিয়া পতিত পাবন নাম কিসে লাগিয়া পতিত পাবন নাম কিসের লাগিয়া গৌরাঙ্গ করুণা করো দীনহীন জানে পড়েছি ভব তুফানে নাহি কোনো স্থার ভব তুফানে নাহি কোনো স্থার শ্রীচরণ তরণী দানে দাসে করো পার শ্রীচরণ তরণী দানে দাসে করো পার গৌরাঙ্গ করুণা করো দীনহীন জানে Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasiranudasa Shri Krishna Chaitanya Prabhu Dasiranudasa Prarthana Karaye Sada Narottam Dasa Prarthana Karaye Sada Narottam Dasa Gauranga Karuna Karo Dinahina Jane Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare श्री गौरंग महाप्रभु की जय श्री हरि नाम संकीर्तन की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के समस्त रूपों में से, समस्त अवतारों में से सबसे कृपालु माने जाते हैं, क्योंकि वो कोई शर्त नहीं रखते हैं। बिना शर्त, बिना पात्रता या अपात्रता देखते हुए वो अपनी असीम कृपा सबको दे देते हैं। और इतना ही नहीं, जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, उनकी कृपा क्या है? वृंदावन का कृष्ण प्रेम, वृंदावन का भाव। वैसे देखा जाए तो वैकुंठ जगत का जो भाव है चतुर्भुज नारायण भगवान के प्रति, ये भी तो कोई साधारण चीज नहीं है। इस दुनिया की तुलना में देखा जाए तो वो तो बहुत शुद्ध है, बहुत उन्नत है, बहुत पावन है। परंतु वैकुंठ के भाव की तुलना में भी जो वृंदावन का भाव है वो और भी विशेष माना जाता है। और भगवान के अन्य अवतार इस व्रज प्रेम को प्रदान साधारणतः नहीं करते हैं। अधिकतर जितने भी भगवान के रूप हुए हैं वो वैकुंठ भाव प्रदान करते हैं, एक ऐश्वर्य की भावना में भगवान की उपासना करने की कृपा करते हैं। ये भी बहुत बड़ी कृपा है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो जब हम इस वैकुंठ भाव को साधारण कहते हैं तो हमें इसे गलत नहीं समझना चाहिए, कोई हीन बात या कोई साधारण बात नहीं समझनी चाहिए। फिर भी वृंदावन का प्रेम इतना विशेष होने के कारण ये उन्नत उज्ज्वल रस कहलाता है। और इस वृंदावन के भाव में भी जो माधुर्य रस है वो और भी उन्नत कहलाता है। तो वो रस जिसके बारे में इतने गलत फहमियां हैं, जिसके बारे में इतनी भ्रांतियां हैं समाज में, जिसके कारण श्री कृष्ण की लोग निंदा करते हैं, उनको गलत समझते हैं, भक्ति को भी गलत समझते हैं, ऐसे तथाकथित अनैतिक चीज को वो सबसे ऊंचा प्रदर्शित करके बांट रहे हैं। परंतु ये कोई सस्ती बात नहीं है, सहज बात नहीं है। इसके लिए बहुत साधन भजन करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। हालांकि महाप्रभु बिना कोई पात्रता के ये प्रदान करते हैं, हम जैसे साधारण भक्तों के लिए इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे। महाप्रभु देने वाले हैं ना, तो हम ऐसे ही बैठ जाएंगे और फिर अवश्य कृपा मिलेगी। नहीं, ये महाप्रभु की कृपा की सही समझ नहीं है। अवश्य महाप्रभु ने ऐसे भी किया था, जब वो संकीर्तन करते करते जाते थे, जहां भी भ्रमण करते थे वहां हजारों बल्कि लाखों लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे। यूं ही जब वो दूर से महाप्रभु को देखते थे कीर्तन करते हुए, तो उनके शरीर में भी कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाते थे, उनका चित्त कृष्ण प्रेम से भर जाता था। और इतना ही नहीं, जब ये लोग अपने गांव में चले जाते थे तो उनको देखने वाले लोग जो हैं, उनको भी कृष्ण प्रेम की बीमारी लग जाती थी। जैसे एक बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति तक फैलती है, तो उसी तरह से ये एक बीमारी ये फैलती गई महाप्रभु के कृपा से।
वैसे बाहर के लोग इसे बीमारी ही समझते हैं। जब कोई कृष्ण भक्ति में आता है तो लोग सोचते हैं ये पागल हो गया या पता नहीं क्या हो गया, हो जाएगा, अभी हुआ नहीं तो। और आजकल हम चैतन्य महाप्रभु की कथा में आगे अभी पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले हैं कि कैसे ऐसे पागल बनना हमारे जीवन का लक्ष्य है, हमारा जीवन कितना धन्य हो जाएगा ऐसे पागलपन प्राप्त करने से। वैसे भी दुनिया में क्या लोग पागल नहीं है, दुनिया में लोग माया के जाल में पागल हैं। अभी हमें कृष्ण प्रेम में पागल होना चाहिए, बस उतना ही है। जितने भी बड़े बड़े संत रहे हैं उन समाज उनको पागल ही बुलाता था, चाहे वो महाराष्ट्र के में तुकाराम हो, यहां पुरंदरदास हो, कनकदास हो, उनको निंदा करते थे कई लोग, गुजरात में नरसिंह मेहता हो, राजस्थान में मीराबाई हो, चैतन्य महाप्रभु को भी कितने अपशब्द वहां के ब्राह्मण बोला करते थे, तथा कथित बहुत ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बड़े बड़े पंडित विद्वान दिग्विजयी पंडित भी उनको पागल समझते थे और सोचते थे कि निमाय को पता नहीं क्या वात का विकार हो गया, सर में वात चढ़ गया, इसलिए दिन भर संकीर्तन करते रहता है, खुद तो अकेला पागल हो गया, अब नवद्वीप में सभी को पागल करने का ठेका इसने ले रखा है। इस तरह से निंदा करते थे वो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु दिन रात केवल कृष्ण नाम लेने में मग्न रहा करते थे। तो खैर ये सस्ती चीज नहीं है, हालांकि महाप्रभु ऐसे किया करते थे। हमें चाहिए कि महाप्रभु के कृपा प्राप्त करने के लिए हमें भी पात्र होना चाहिए, भक्तों के संग में आके श्रवण करके कीर्तन करके। बहुत सुलभ बना दिया है भगवान ने ये संकीर्तन का मार्ग। तो महाप्रभु जो कि मूर्तिमान कृपा है, ये कृपा जो है भगवान का बहुत महत्वपूर्ण गुण है, सर्वश्रेष्ठ गुण है। तो इसके कारण जब वो मायावादियों को भी मायावादियों का उद्धार करना चाहते थे तो वो गए वाराणसी, और जैसे कि हम कल चर्चा कर रहे थे, वाराणसी में उन्होंने सुना कि उनकी निंदा हो रही है, ध्यान नहीं दिया, हंस पड़े, आगे चले, वृंदावन की यात्रा करके फिर जब लौट रहे थे पुनः इस समय वाराणसी में पूरे 2 महीने रहे, सनातन गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की और मायावादी सन्यासियों के साथ उठे बैठे नहीं, और ये बात उनको बहुत बुरा लगा तो वो भी निंदा बढ़ाने लगे। तो उनके जो पार्षद थे महाप्रभु के, तपन मिश्र, चंद्रशेखर आचार्य, उनको अच्छा नहीं लगा, और एक ब्राह्मण थे जिनको भी ये सहन नहीं हो रहा था। तो उन्होंने सारे मायावादी सन्यासियों को अपने घर में बुलाया था और महाप्रभु को भी निमंत्रण दिया, और आश्चर्यचकित हुए कि महाप्रभु ने तुरंत वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, क्योंकि सबका उद्धार करना तो उनके अवतीर्ण होने का उद्देश्य है ना, यदि वो नहीं जाते तो इन लोगों का उद्धार कैसे होता। और फिर महाप्रभु के नम्रता से, उनके तेज से, उनके सौम्य व्यवहार से सारे मायावादी सन्यासियों का हृदय पिघल गया। जो उनके मुख्य सन्यासी थे प्रकाश आनंद सरस्वती, वो उठे महाप्रभु के उनके करकमलों से पकड़ के वो यहां ले आए, सारे सन्यासियों के बीच में बिठाया और उनसे पूछा कि आप भी शंकर संप्रदाय के सन्यासी हो, भारतीय संप्रदाय, फिर भी आप वेदांत श्रवण न करके, ध्यान आदि न करके, आप केवल भावुक लोगों के साथ एक साधारण भावुक व्यक्ति की तरह कीर्तन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? तो फिर महाप्रभु ने उत्तर देना प्रारंभ किया। अब ये उपदेश जो महाप्रभु मायावादी सन्यासियों को दे रहे हैं वो वास्तव में हमारे लिए है, हम सब के लिए है, क्योंकि हर एक वाक्य के पीछे बहुत तात्पर्य है महाप्रभु का। महाप्रभु कहना शुरू करते हैं, जबकि प्रकाश आनंद सरस्वती उनसे ये प्रश्न करते हैं सारे मायावादी सन्यासियों की ओर से, प्रभु को हे सुनो श्रीपाद इहर कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी कोरिलो शासन। महाप्रभु कहने लगे, सुनिए श्रीपाद, स्वामी जी प्रकाश आनंद सरस्वती को कह रहे हैं, इहर कारण, इसका कारण सुनिए। किस चीज का कारण? कि हम केवल नाम संकीर्तन क्यों करते हैं, ये वेदांत श्रवण वेदांत पठन आदि क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका कारण अभी वो बताने जा रहे हैं। तो क्या कारण है? गुरु मोरे मूर्ख देखे कोरिलो शासन, गुरु ने मुझे भर्त्सना की कि तुम बड़े मूर्ख हो। ऐसे तो कभी चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रील ईश्वरपुरी ने नहीं कहा था। कैसे कह सकते हैं? ईश्वरपुरी तो जान गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। पहले भी जब ईश्वरपुरी आए थे नवद्वीप में, उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित के नाम से जाने जाते थे, और उस समय एक शुष्क व्याकरण के विद्वान के रूप में पेश आते थे, सबको चुनौतियां देते थे वाद के लिए तर्क के लिए, और इस तरह से सबको हरा डालते थे वाद विवाद में कि कोई भी उनका सामना करना नहीं पसंद करता था। बड़े बड़े भट्टाचार्य और आचार्य इत्यादि उपाध्याय सब थे वहां जो बहुत प्रसिद्ध थे, परंतु निमाय को देखकर दूसरा रास्ता पकड़ लेते थे, क्योंकि निमाय के सामने कोई भी तर्क नहीं कर सकता था, और उससे निमाय एक बालक केवल थे। फिर भी जब निमाय वैष्णवों के सामने आते थे, हालांकि उन्होंने अपनी वैष्णवता को प्रदर्शित नहीं किया, फिर भी अचानक नम्र हो जाते थे। मुकुंद को भी जब बार बार जबरदस्ती पकड़ लेते थे, चलो तर्क करो मेरे साथ वाद करो, तो उस समय मुकुंद जब इधर उधर भाग जाने की कोशिश करते तो महाप्रभु कहते, निमाय पंडित कहते, मैं जानता हूं तुम क्यों जा रहे हो भाग के, तुम वैष्णव हो ना, तो वैष्णव जो होते हैं वो केवल कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, केवल व्यर्थ में ऐसे तर्क वितर्क में वाद विवाद में अपना समय गंवाना नहीं चाहते हैं। तो तुम देखो मुकुंद, एक दिन मैं भी एक ऐसा वैष्णव बनूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। और वास्तव में सभी लोग देखते रह ही गए। तो उन दिनों में भी जब ईश्वरपुरी आए थे तो वो एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे, श्री कृष्ण लीलामृत, और महान वैष्णव होने के नाते वो बहुत नम्र थे, और वो जान चुके थे कि निमाय पंडित का जो पांडित्य है, जो विद्वत्ता है, वो अद्भुत है, और लोग बड़े बड़े पंडित भी घबराते हैं उनसे वाद करने के लिए। वैसे जो वैष्णव होते हैं उनको कोई वाद विवाद का डर नहीं रहता, क्योंकि इसके पीछे वो पड़ते ही नहीं है, और होते भी हैं तो उनको कोई मान सम्मान का विचार नहीं होता कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे तो कुछ विचार नहीं होता। तो ईश्वरपुरी तो वैसे भी निडर थे, वो भी बड़े विद्वान थे वास्तव में, परंतु अपने आप को बड़ा विद्वान कभी प्रस्तुत नहीं करते थे समाज में। तो फिर एक बार जब निमाय पंडित आए, और बार बार वो ईश्वरपुरी के पास जाया करते थे, क्योंकि उनको ईश्वरपुरी का संग बहुत अच्छा लगता था, उनका स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, और उनके साथ में जाके बैठते। और फिर एक बार ईश्वरपुरी ने निमाय पंडित से कहा कि मैं जिस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं आप जरा देखो निमाई, आप बड़े विद्वान हो मैंने सुना है, इसमें कोई त्रुटियां हैं गलतियां हैं तो देखो जरा ठीक करो इनको। तो निमाई पंडित ने मना किया कि आपके रचना में कैसे कोई गलती हो सकती है। फिर भी बार बार आग्रह करने पर निमाई पंडित ने कहा, मुझे हाँ एक गलती दिखाई पड़ रही है। तो कोई व्याकरण की बात उन्होंने उठाई, उन्हें कहा कि नहीं नहीं ये ऐसे होना चाहिए। फिर निमाई पंडित तो चले गए। ईश्वरपुरी जब अगले दिन निमाई पंडित से मिले, कहने लगे कि मैंने तुम्हारी बात बहुत गौर से सोच ली, वास्तव में मैंने जो कहा था वही सही था, तुमने जो कहा था वो गलत है। मतलब मेरी जो मूल बात थी वही सही थी। और फिर उन्होंने कारण बताया और फिर निमाई पंडित कहने लगे, हाँ आप सही है। पहली बार निमाई पंडित हार गए और इस समय निमाई पंडित को हारने में इतना आनंद आया कि उन्होंने सोचा कि बार बार इनके सामने हारना चाहिए। तो वैसे ईश्वरपुरी निमाई पंडित को और निमाई पंडित ईश्वरपुरी को अच्छी तरह से जानते थे नवद्वीप में ऐसे संघ के कारण। और फिर जब निमाई पंडित गया गए थे अपने पिता के श्राद्ध के लिए, तो उस समय ईश्वरपुरी पाद से उन्होंने दीक्षा ले ली थी। तो जब दीक्षा ली उस समय भी ईश्वरपुरी को पता चल गया था कि ये कोई साधारण वैष्णव भी नहीं है, असाधारण वैष्णव भी नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है। फिर भी सोचने लगे, अरे कैसी विडंबना है, अब मैं भगवान का गुरु बन गया अब कैसे हो सकता है। फिर भी ये भगवान की लीला है, भगवान चाहते हैं कि मैं ऐसी सेवा करूं उनकी इस तरह से। तो जब ईश्वरपुरी का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति ऐसे था, ये कैसे संभव हो सकता है कि वो उनको मूर्ख बुलाएंगे और ऐसे शासन करेंगे या दंडित करेंगे या भर्त्सना करेंगे उनकी। ये तो केवल महाप्रभु कह रहे हैं मायावादी सन्यासियों के उपदेश के लिए, और हम सबको उपदेश प्रदान कर रहे हैं इनके उनके द्वारा। महाप्रभु बताना चाह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए, प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं कि मैं मूर्ख नंबर एक हूं, मूर्ख नंबर दो नहीं, दो भी हैं तो सोचेंगे भाई मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई है, तो ठीक है मैं अच्छी हूं, मैं अच्छा हूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, महाप्रभु का ऐसे कहने का तात्पर्य यह था कि इस कलयुग में हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं मूर्ख हूं, और ये वेदांत पाठ करके और ध्यान में बैठ के मैं परम गति की प्राप्ति आध्यात्मिक समसिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, ये कलयुग में संभव नहीं है। तो जो चीज संभव नहीं है उसके पीछे इतना प्रयास करना, ये तो मूर्खता ही है ना। तो ऐसे भाव को स्वीकार करके और प्रदर्शित करके महाप्रभु सारे कलयुग के लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि ये वेदांत पठन, ये ध्यान में बैठना, इन चीजों के पीछे नहीं लगना, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही काम करेगा। केवल भगवान श्री कृष्ण के नामोच्चारण से वो समस्त सिद्धियां और अधिक प्राप्त होंगी जो कि पूर्व युगों में ध्यान, यज्ञ, अर्चा विग्रह की आराधना आदि से प्राप्त हुआ करते थे। अच्छा, अब ये प्रश्न आता है, भक्त कई बार ये प्रश्न भी पूछते हैं कि यदि भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है तो केवल कलयुग में ही क्यों? कलयुग में काम करता है भगवान का नाम बड़ी अच्छी तरह से, सबका उद्धार हो जाता है और इतना आसान है ये रास्ता, तो फिर पूर्व युगों में ऐसे क्यों नहीं था? पूर्व युगों में जो भक्त थे भगवान के, उन्होंने हरि नाम का आश्रय क्यों नहीं लिया? ये एक महत्वपूर्ण बात है। और श्रील जीव गोस्वामी इस बात का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि काल के अनुसार लोगों की मानसिक वृत्ति, लोगों का बौद्धिक बल, लोगों की तपस्या करने की क्षमता, उनकी शारीरिक सहनशीलता, उनकी जीवन की अवधि, उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव और सर्वसाधारण एक वातावरण इतना खराब रहता है या इतना निम्न श्रेणी का रहता है कलयुग में कि वो सत्ययुग के लोगों की तरह बिल्कुल नहीं है। सत्ययुग के लोगों में ये जितने भी गुण हैं वो इतने श्रेष्ठ हैं, अतुलनीय हैं, उनकी योग्यता इतनी अपार है कि उनको जब कोई साधारण चीज बताई जाती है करने के लिए तो वो सोचते हैं कि अरे इससे क्या होगा। जैसे समझ लीजिए एक 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है और वो भी बहुत बुद्धिमान है और उसे कहा जाए कि तुम दूसरी कक्षा की परीक्षा के लिए बैठो, सोचा अरे क्या है, 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए बैठने से कहें तो ठीक है, मैं मेरे लिए कुछ चुनौती रहेगी, ठीक है मैं कुछ पढ़ाई करूंगा, कुछ हो भी सकता है मैं सफल हो जाऊंगा, परंतु दूसरे कक्षा की परीक्षा वो भी स्वर्ण पदक जीतने वाला विद्यार्थी 10वीं कक्षा में, अच्छा नहीं लगेगा। तो सत्ययुग के लोगों की योग्यता इतनी अपार है वो सोचते हैं केवल नाम कीर्तन करना ये क्या है, ये साधारण चीज है, बैठे बैठे ऐसे हो सकता है, कोई तपस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई विद्वत्ता की जरूरत नहीं, जंगल में नहीं जाना, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में भी कर सकते हैं, कितनी आसान बात है ये। तो उनको लगता है कि ये सब बहुत आसान हमारे लिए, तो इस स्वाभाविक रूप से जो रुचि होनी चाहिए इस चीज के लिए नहीं उत्पन्न होती, क्योंकि स्वाभाविक रुचि उनकी कठिन चीजों के प्रति होती है, जो बहुत कठिन कठिन चीजें हो, जैसे कि संन्यास लेके जंगल में चले जाना, जंगल में रहना, कोई भरोसा नहीं कि भोजन कहां से आएगा, ठंडी गर्मी बारिश बर्फ की परवाह नहीं करना, जंगली पशु हैं उनके उनसे डरना नहीं, सांप आदि भी हो सकते हैं, बस ध्यान में स्थित होके बैठना, और कितने समय तक, केवल 1000 वर्ष 2000 नहीं, कभी कभी 60,000 वर्षों तक तपस्या करना और अपने प्राण को हड्डियों में स्थित कर देना। हम जानते हैं कि हम जब जप करने बैठते हैं अपने आप को ओढ़ के बैठते, मच्छर काटते हैं तो ध्यान भंग हो जाता है, एक मच्छर काटता है तो परेशानी होती है, एक कोई चींटी काटती है तो बड़े परेशानी होती है। अब देखिए वाल्मीकि मुनि जैसे तपस्वी, उनके सारे शरीर को चींटियों ने खा लिया था, जितनी भी चर्बी थी मांस था सब पूरा खा लिया था, केवल हड्डियां थी उनकी। आखिर उनका नाम भी वाल्मीकि इसलिए तो हुआ क्योंकि चींटियों का जो पहाड़ है, घर है, वो उनके शरीर के ऊपर ही बन गया वाल्मीकि, इसलिए वाल्मीकि नाम हुआ। अरे वाल्मीकि ये तो संत थे, इनकी बात तो दूर रही, हिरण्यकश्यप जैसा व्यक्ति, वो जब तपस्या करने गया था तो हजारों वर्षों तक तपस्या कर रहा था और उसका भी शरीर जो है तरह तरह के कीड़ों ने चींटियों ने पूरी तरह से खा लिया था, केवल हड्डियां रह गई थीं और हड्डियों में प्राण घूम रहा था। और जब ब्रह्मा जी अंततः संतुष्ट होकर आए, बल्कि बाध्य होकर आए और अपने कमंडलू से जल छिड़काया हिरण्यकश्यप के शरीर के ऊपर या उनके हड्डियों के ऊपर, तब उनको एक बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली शरीर प्राप्त हुआ, बहुत सुंदर। तो वो क्षमता उस समय के लोगों में हुआ करती थी कि इतने लंबे समय तक तपस्या करना, कठिन से कठिन तपस्या करना, कष्ट सहन करने की क्षमता होती थी, दर्द सहन करने की, और प्राण जो है वो शरीर में फिर भी रहते थे, इसलिए वहां के उस समय के जो लोग थे उनको ऐसे साधारण चीज बताई जाए कि आप बैठ के भक्तों के बीच में बैठो कीर्तन करो, तो उनको लगता था कि ये इतना आसान रास्ता हमारे लिए ये ठीक नहीं, कुछ बहुत ही ऐसे चुनौतीपूर्ण कठिन रास्ता ढूंढना चाहिए। इसलिए उनके लिए भगवान ने फिर उनकी मानसिकता को देखकर, उनकी अधिक योग्यता को देखकर भगवान ने उनके लिए ध्यान का रास्ता बताया। 60,000 वर्षों तक जंगल में बैठो ध्यान करो मेरे ऊपर, ऐसे भगवान ने आदेश दिया। अब हम यहां 60,000 वर्ष तो क्या 60 सेकंड भी नहीं बैठ सकते ध्यान में, नाम जब भी करते हैं उसके लिए नाम उच्चारण करना पड़ता है जोर से ताकि नींद नहीं आए, फिर भी नींद आ जाती है, फिर भी सो जाते हैं, मन इधर उधर भटकने लगता है। तो इस युग में वो क्षमता नहीं होने के कारण, वो सामर्थ्य नहीं होने के कारण, वो जो सत्युग की पद्धति थी वो आजकल के लिए नहीं हो सकती। उसी तरह से त्रेता युग में, द्वापर युग में क्रमशः जितने भी ये गुण हैं जिनका उल्लेख हमने पहले किया वो सब कम होते जाते हैं, सत्युग की शुरुआत से लेकर कलयुग के अंत तक, सत्य त्रेता द्वापर कली, धीरे 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 से इनका अच्छे चीजों का घटन होते रहता है और बुरी चीजों का वर्धन होते रहता है। इसलिए कलयुग के जो प्राणी हैं या मनुष्य हैं वो सत्युग की या त्रेता युग की या द्वापर की भी के पद्धतियों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और हालांकि सत्युग आदि के जो लोग हैं वो कलयुग के पद्धति को आसानी से कर सकते हैं परंतु नहीं करते हैं। और एक भी कारण है कि सत्युग के लोग इतना भगवान के नाम संकीर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके पीछे वैसे भगवान का नाम कैसे लिया जाता है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक छोटा बच्चा अपने मां को पुकारता है वैसे हमें भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का आश्रय लेना चाहिए, उनको पुकारना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते समय ये हमारी भावना होनी चाहिए, तो उसे चाहिए इसके लिए हमें चाहिए कि हम एक निस्सहाय भाव से भगवान की ओर बढ़ें। यदि हमारे अंदर बहुत गर्व है, यदि हमारे अंदर बहुत सामर्थ्य है हमारी योग्यता का विचार हम करते हैं तो फिर हम निस्सहाय भाव से आश्रय नहीं ले पाएंगे। निस्सहाय भाव किसका होता है जो समझ गया है कि मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय भगवान का नाम और सिवाय भगवान। जब व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं केवल भगवान के अलावा भगवान की क्यों, मेरी बुद्धि है, मेरी शक्ति है, मेरे पास बहुत कुछ है, तो फिर वो इतनी तरह से आश्रय नहीं लेगा। और वो भगवान का भक्त हो भी तो वो आश्रय लेने की जो तीव्रता है उतनी शायद नहीं हो पाएगी जो कि कलयुग में है, क्योंकि कलयुग में हमारी परिस्थिति इतनी निराशा से भरी हुई है। हर एक के घर में देखिए, हर एक के जीवन में देखिए, घर में क्या हर एक को पूछे, समस्याओं की कोई सीमा नहीं है। आर्थिक समस्या, कोई बौद्धिक समस्या, कोई मानसिक समस्या, शारीरिक समस्या, संबंधों की समस्या, तरह तरह की समस्याएं, हर एक व्यक्ति इन समस्याओं से पीड़ित है। आजकल तनाव ग्रस्त जीवन है तो कहां आजकल के लोग ऐसे ध्यान आदि करेंगे। तब इनमें से भी जो बुद्धिमान है जब अपनी निस्सहायता को समझ लेते हैं तो भगवान के चरणों में आश्रय स्वीकार कर सकते हैं। जब वो समझ जाएंगे कि केवल भौतिक भोग करना, केवल संसार में प्रगति करने के प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है, नामाश्रया कोरी, कोई बताएंगे भक्तिविनोद ठाकुर का क्या गाना है, यतन तुमी थाकह अपन काजे, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब अपने संसार के कामों से थक जाओगे कि बस बहुत हो गया, अब इनमें सफलता प्राप्त नहीं होनी है, ये केवल दुख का ही कारण है, तब इतना यत्न करने के बाद जब हम थक के आएंगे कृष्ण के पास हाथ ऊपर करके कि अब कृष्ण आप ही के शरण में हम आए, तब जाकर हम भगवान के नाम का आश्रय ले सकते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों के जीवन में कभी कभी भगवान दुख भेजते हैं। भक्तों के जीवन में दुख आने के अनेक कारण हैं, उनमें से ये एक प्रमुख कारण है हमारे निस्सहायता को बढ़ाने के लिए, ताकि हम भगवान का आश्रय तीव्रता से लें। जब कठिनाइयां नहीं आएंगी जीवन में तो भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रेरणा क्या होगा हमारे पास? हम सोचेंगे सब ठीक ठाक चल रहा है, अब क्या आश्रय लेंगे? जब भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे तो बड़े आराम से करेंगे, लेकिन जब कठिनाइयां हो रही हैं उस समय बड़े निस्सहाय भाव से भगवान और उनके नाम का आश्रय लेंगे। तो सत्य आदि युगों में लोगों की योग्यता इतनी थी, इतने पीड़ित नहीं रहा करते थे वो लोग, और अपने योग्यता के कारण इतने निस्सहायता की जो भावना है वो उत्पन्न नहीं होती थी आसान से। तो कलयुग के जो दुर्गुण हैं वो वास्तव में सद्गुण हैं, तो कलयुग के जो दुर्भाग्यशाली लोग हैं वो वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, यदि वो समझें कि सही भाग्य किसमें है, भगवान के नाम लेने में। इस श्लोक को आप सुने होंगे बार बार, इसको आप दोहराते हैं, कलिम सभाज यंत्य आर्य गुणज्ञ सार भागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो बहुत ही बुद्धिमान आर्य सज्जन होते हैं, ऋषि मुनिगण होते हैं, जो चीजों के गुणों को जान सकते हैं, सार को पहचान सकते हैं किसी चीज के, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में केवल संकीर्तन के द्वारा, यत्र संकीर्तनेनैव सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, सारे हमारी इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं, विशेष करके आध्यात्मिक जो वांछाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और परम सिद्धि की प्राप्ति होती है केवल संकीर्तन से। तो इतना आसान रास्ता है कि फिर मुनियों ने कहा है कि हमें कलयुग की उपासना करनी चाहिए। इसलिए जो देवलोक के निवासी हैं वो भी कलयुग में आना चाहते हैं, ताकि चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में वो शामिल हो जाएं। इस तरह कलयुग का जो धर्म है हरि नाम संकीर्तन, वो विशेष रूप से कलयुग के लिए है, परंतु इससे हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान के नाम की शक्ति अन्य युगों में नहीं होती है। भगवान का नाम और भगवान, ये दोनों अभिन्न हैं। तो जब भगवान सर्वशक्तिमान हैं और हर समय शक्तिमान रहते हैं, कभी भी उनकी शक्ति में घटन नहीं होती तनिक भी, तो उनके नाम की शक्ति में भी कभी घटन नहीं होती, परंतु लोग उतना स्वीकार नहीं करते हैं जितना कि कलयुग में स्वीकार कर सकते हैं। तो खैर, इसलिए हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, और इसलिए सत्युग के जो सारे पद्धतियां हैं, जैसे ध्यान में बैठना, ये वेदांत पठन करना आदि, इनको हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। इसलिए अपने आप को मूर्ख पेश कर रहे हैं मायावादी सन्यासियों के सामने, और फिर वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने क्या कहा मुझसे, मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नहीं का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सारा। मूर्ख तुम्हें तुम मूर्ख हो, तुम्हारा नाही का वेदांत अधिकार, तुम्हारा वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जप सदा, भगवान श्री कृष्ण के नामों का जो मंत्र है उनको जपो। यही मंत्र सार, समस्त मंत्रों में से जितने भी वैदिक मंत्रों का उल्लेख है सारे शास्त्रों में, उनका सार है ये कृष्ण नाम का मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह महाप्रभुपाद जी आगे यहाँ तात्पर्य में ये भी कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि वो गुरु के आदेशों का पालन बड़े अच्छे ढंग से करे, जैसे महाप्रभु ने किया था, उन्हीं की भावना होनी चाहिए। अपने आप को मूर्ख नंबर कौन सा, एक समझ के, दो नहीं तीन नहीं। और फिर जो हमें आदेश मिलते हैं उनका पालन अच्छी तरह से करें। अपनी आचारी भक्त करिला प्रचार, महाप्रभु ने अपने ही आचरण से भक्ति कैसे करनी चाहिए वो सिखलाया सभी को। तो एक आदर्श शिष्य कैसे बनना चाहिए वो भी अपने आचरण से दिखलाया कि मेरे गुरु ने कहा तुम वेदांत नहीं पढ़ना, तुम इतने योग्य नहीं हो, तुम केवल कृष्ण नाम लो बस। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा फिर वही सही। फिर आगे कहते हैं, कृष्ण मंत्र होते होवे संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण रचरण। अब कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने से संसार का मोचन होगा, संसार से तुम मुक्त हो जाओगे। कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण रचरण, तो कृष्ण नाम लेने से श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करोगे। और जैसे आगे चल के ईश्वरपुरी पाद समझाने वाले हैं, श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे पाप नष्ट हो जाएं, कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाके मोक्ष मिल जाए, ये नहीं। वैसे पापों का विनाश होना ये तो स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक ही है ऐसे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। मैं उन भगवान श्री हरि के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, जिनके नामोच्चारण मात्र से सारे पापों का विनाश संपूर्ण रीति से होता है, और जिनके चरण कमलों में प्रणाम करने से सारे दुखों का शमन होता है या वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे भागवत में भी कहा गया है कि पापों का विनाश होता है, परंतु ये उद्देश्य नहीं है। जैसे फिर से स्कूल का उदाहरण दे देते हैं, एक दसवीं कक्षा का जो विद्यार्थी है उसे यदि बताएं कि दूसरी कक्षा पास करना ये स्कूल जाने का उद्देश्य है, नहीं उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है दसवीं कक्षा पास करके निकल जाना। परंतु इस कार्य में दूसरी कक्षा भी आसानी से अपने आप वो पार करके जाएगा, फिर जाके ना वो दसवीं कक्षा तक पहुंचेगा। तो उसी तरह से पापों का विनाश ये हरि नाम लेने का सही उद्देश्य नहीं है, ये तो अपने आप ही आ जाएगा। भक्त के अलग से प्रयास किए बिना उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो फिर सही उद्देश्य क्या है, यहां ईश्वरपुरी पाद बता रहे हैं, कृष्ण के श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति। जब श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होती है तो उनके प्रति शुद्ध प्रेम जागृत होता है, और यही प्रेम है जो हमारा सबसे अनमोल और सर्वश्रेष्ठ धन है। तो कृष्ण नाम जपने का कीर्तन करने का उद्देश्य है कि हमें श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो ऐसे ईश्वरपुरी पाद उनको उपदेश दे रहे हैं। वैसे वेदांत के पठन में देखा जाए तो इस कलयुग में वैसे लोगों की योग्यता तो है नहीं, और क्योंकि भक्ति भावना से वेदांत का पठन नहीं करते हैं, इसलिए तरह तरह के वो अर्थ निकालते हैं वेदांत सूत्र आदि के। शंकराचार्य ने ऐसे कहा था उनके शिष्यों के लिए, वेदांत वाक्येषु रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः कि जो कौपीनवन्तः है, जो कौपीनधारी जो सन्यासी है, उनको क्या चाहिए? वेदांत वाक्येषु रमन्तः, वेदांत के वाक्यों में रमण करना चाहिए, और खलु भाग्यवन्तः, और वो वास्तव में बहुत भाग्यवान है कि वो वेदांत का पठन करते हैं। परंतु वेदांत का पठन करने के बाद यदि हम श्री कृष्ण को नहीं जानते हैं, उनके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तो हमारा वेदांत का पठन व्यर्थ हुआ। दूसरी ओर से जो भले वेदांत न जानता हो, परंतु कृष्ण नाम ले रहा है, कृष्ण नाम के प्रति श्रद्धा है, कृष्ण नाम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इस बात में दृढ़ श्रद्धा है, तो हमें जान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को वेदांत का निष्कर्ष पता है, क्योंकि इसका आचरण उसने कर लिया है, अपने जीवन में इसे स्वीकार किया है। तो हरि नाम लेना ही ये वेदांत का निष्कर्ष है। फिर भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, लोगों को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण भक्त लोग हैं, उनको कोई शास्त्र नहीं पता, वेदांत नहीं पता, दोनों करने चाहिए। वेदांत का पठन करना भी चाहिए, वेदांत पता होना चाहिए क्या चीज है, और हरि नाम लेना चाहिए। और जो वेदांत का सार है वो श्रीमद् भागवत में है, अर्थो यम ब्रह्म सूत्राणाम, वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र की टीका है, इसलिए वेदांत का पठन अपने आप उस व्यक्ति के लिए हो जाता है जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को सुनता है और जिसका पठन करता है। वैसे अनेक संप्रदायों में और साधु समाज में ऐसे मानते हैं कि जब तक वेदांत सूत्र के ऊपर आपके संप्रदाय की टीका नहीं होगी, हम आपके संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर नाम के एक आचार्य रहे हमारे संप्रदाय में, तो जब वो बहुत वृद्ध थे तो उस समय जयपुर के जो एक राजा थे जो वैष्णव थे, उनके सामने एक द्वंद्व खड़ा हो गया था, एक समस्या थी कि किसी दूसरे संप्रदाय के लोग ये राजा को कहना चाह रहे थे कि ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, ये इनका संप्रदाय सच्चा नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि इनके संप्रदाय में वेदांत की टीका नहीं है। ये राजा वास्तव में राधा गोविंद जी के भक्त थे, वृंदावन से गोविंद जी का विग्रह जो है वो जयपुर आया था, उनके राजमहल में ही था, तो गौड़ीय वैष्णवों से बहुत प्रभावित हुए थे, वो भी भक्त बने थे। तो उस संप्रदाय के लोगों ने सोचा कि अब ये वहां जा रहे हैं, तो उन्होंने किसी न किसी तरह से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बारे में कुछ अपशब्द कहना चाहा, कहा कि देखो ये लोग प्रामाणिक नहीं है। तो राजा बेचारे बेचैन हो गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तक उन्होंने संदेश भेजा कि देखिए आप कुछ आके करिए यहां पर। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत वृद्ध थे उस समय, तो उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को भेजा जो उनके शिक्षा शिष्य थे। बलदेव विद्याभूषण जब वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि यहां सारे वो रामानंदी संप्रदाय के सब लोग खड़े थे और सब कह रहे थे, तर्क करने के लिए तैयार थे कि आपकी संप्रदाय झूठी है, सही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा आपकी टीका कहां है वेदांत सूत्र के ऊपर? उन्होंने कहा हम लोग टीका की आवश्यकता नहीं महसूस करते, क्योंकि व्यास देव जी ने ही कहा है अर्थो यम ब्रह्मसूत्राणाम, ये श्रीमद् भागवत है, यही वेदांत की टीका है और टीका उन्हीं ने किया है जिन्होंने कि वेदांत सूत्र की रचना की थी व्यासदेव जी ने, परंतु उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा नहीं, देखिए हर एक संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर टीका होती है। तो उस समय बलदेव विद्याभूषण बाध्य हो गए और उस खुली भरी सभा में उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको हमारी टीका लाके दिखाता हूं। हालांकि उस समय कोई टीका थी नहीं। और फिर वो गए गोविंद देव के सामने गए और कहा कि आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमें बुद्धि दे सकते हैं और आप ही इस टीका को लिख सकते हैं। गोविंद देव के गले से फूलों का हार गिर गया और बलदेव विद्याभूषण ने समझा कि ये भगवान का आशीर्वाद है और फिर उन्होंने टीका लिखना प्रारंभ किया। हाँ, ये सारे हार गिरने वाली बात वगैरह है ना, ये थोड़ा हमें सावधानी सिद्ध करना चाहिए। एक बार एक भक्त जो है वो हमें बता रहे थे, उन्होंने कोई व्यवसाय में कोई निर्णय लिया और वो गलत निकला और बहुत नुकसान हुआ, बहुत बड़े परेशानी उसको हुई। बाद में आए थे हमारे से, हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे ऐसे ऐसे समस्या में, क्या किया तुमने कि ऐसे हो गया? कहा मैंने ऐसे ऐसे से किया। तो ये तो बड़ी मूर्खता की, ऐसे क्यों किया, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। तो किसने कहा कि ऐसे तुम्हें करना चाहिए, ये तो गैर कानूनी भी है और इतना धोखा है, खतरा है, इतना तनाव होगा इसमें, देखो जब भी खराब हो गया ना, नहीं करना चाहिए ऐसे। तो ये विचार ऐसे किसने कहा ऐसे करने के लिए? तो कहने लगा हम गए थे भगवान के पास, जब गए तो उनके वहां से फूल गिर गया नीचे, हमने सोचा भगवान ने हाँ कह दिया हमें। तो हमें इन चीजों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग भी करना चाहिए और हो सकता है किसी दूसरे भक्त की इच्छा पूरी हो गई होगी, बेचारे वो कोई पूछ रहा होगा कि हमें जप में नींद आती है, जरा नींद से हमें मुक्त कर दीजिए। हो सकता भगवान ने कहा ठीक है आज से सोओगे नहीं तुम जप में, हो सकता है उसके लिए गिरा हो, इसी ने सोचा कि ये गड़बड़ वाला काम करने में भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। तो खैर बलदेव विद्याभूषण ने इसको भगवान का आशीर्वाद समझा और ऐसे एक टीका लिखी उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने गोविंद भाष्य लिखा दिया, क्योंकि गोविंद देव की कृपा से यह हुआ। और फिर जब वहां राजा जय सिंह के दरबार में गए तो वो अन्य जो भी पंडित थे वो सब निरुत्तर रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। एक के बाद एक के बाद एक बलदेव विद्याभूषण ने ऐसी बातें कही, हर एक सूत्र के ऊपर उन्होंने टीका दे दी और जितने भी उनके संशय थे और चुनौतियां थी, प्रश्न थे, उन सब का उत्तर इस टीका के माध्यम से उन्होंने दे दिया। तो हालांकि गौड़ीय वैष्णव जो होते हैं वेदांत सूत्र को महत्व नहीं देते हैं, परंतु क्या है दबाव के कारण ऐसे लिखने की आवश्यकता पड़ी, और इसलिए ताकि लोग ऐसा न समझें कि ये गौड़ीय वैष्णव या चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कीर्तनीय जो हैं ये लोग इतने शास्त्रों में निपुण नहीं है, ताकि लोग ऐसे न समझें, इसलिए हमारे आचार्यों ने ये सारी टीकाएं लिखी हैं। परंतु वैसे तो हमारे लिए श्रीमद् भागवत पर्याप्त है। श्रीमद् भागवत सुनना, भगवत गीता सुनना और हरिनाम संकीर्तन करना। तो चैतन्य महाप्रभु फिर अपने गुरु महाराज की बातों को दोहरा रहे हैं और वो कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने ऐसे मुझे आदेश दिया। और फिर वो कहते हैं नाम बिनु कलि काले नहीं अर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। नाम बिनु कलि काले नहीं अर धर्म। तो इस कलयुग में भगवान के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा धर्म नहीं है। सर्व मंत्र सार नाम, तो भगवान का नाम ही समस्त मंत्रों का सार है। ए शास्त्र मर्म, शास्त्रों का मर्म जो है, तात्पर्य, गुह्य अर्थ इत्यादि, ये भगवान का नाम ही है। इसलिए कलयुग में दूसरा कोई भी रास्ता उपयुक्त नहीं है और नहीं हमारे लिए फल प्रदान कर सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से बात करना ठीक समझा। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के धाम का जो धन है हरि नाम संकीर्तन, उसे हम स्वीकार कर सकते हैं। फिर आगे महाप्रभु कहते हैं कि उनके उनके गुरु महाराज ने क्या कहा। ऐ तो बोली एक श्लोक शिखाई ला मोरे, कंठे कोरी ए श्लोक कोरी हो विचारे। ऐ तो बोली मतलब ऐसे बोलकर, एक श्लोक शिखाई ला मोरे, फिर उन्होंने मुझे एक श्लोक सिखाया और ये कहा कि इस श्लोक को सदैव अपने कंठ में धारण करके रखा करो, अर्थात बारंबार इस श्लोक को बोला करो। तो वो श्लोक कौन सा है? आप सब इस श्लोक को अच्छी तरह से जानते हैं, तो आइए हमारे साथ साथ में आप बोलिए। हरे नाम हरे नाम,
हरे नाम हरे नाम,
हरे नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव नास्त्येव, नास्त्येव गतिरन्यथा। इस कलयुग में एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है और एक ही रास्ता है, और वो है हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। तीन बार जब कोई चीज दोहराई जाती है तो इसका मतलब है कि उस चीज पर बहुत जोर दिया जा रहा है। तो इस श्लोक को ईश्वरपुरी ने दोहरा कर कहा कि देखो, इस श्लोक को अपने कंठ में धारण करके रखो, हमेशा इसको याद रखना कि कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र उपाय है और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि हरि नाम ही अपने आप में समर्थ है समस्त सिद्धियों को प्रदान करने में, आध्यात्मिक समसिद्धि को प्राप्त करने में, कृष्ण प्रेम दिलाने में, तो फिर हमें गुरु की क्या आवश्यकता है, दीक्षा की भी क्या आवश्यकता है? केवल हरि नाम लेंगे ना। ये प्रश्न कई बार लोग कहते हैं, जब हरि नाम ही सब कुछ है तो हम केवल हरि नाम लेंगे। परंतु ऐसा है कि हरि नाम को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जब हम गुरु से स्वीकार करते हैं हरि नाम, तो उस समय वो हरि नाम को लेने की शक्ति और पात्रता हमें मिलती है, वो शक्ति मिलती है। और प्रभुपाद जी हैं एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि इस कलयुग में हमारे अंदर इतने सारे दुर्गुण हैं कि हम हरि नाम को भी अच्छी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और इसका अनुभव हम सब करते हैं, जप लेते समय नींद आती है, कीर्तन करते समय भी ऊब जाते हैं। तो हालांकि रास्ता इतना आसान है हमारे लिए, फिर भी हम असमर्थ हैं। मन इतना बेचैन रहता है, ध्यान से जप करने नहीं देता, मन भटकने लगता है, नींद आती है, तरह तरह के विचार मन में आते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अर्चा विग्रह की सेवा, ये पंचरात्रिक विधि, ये कलयुग में भी महत्वपूर्ण है वैष्णवों के लिए, क्योंकि अर्चा विग्रह की सेवा करने से मन शांत होने लगता है। मन की जो बेचैनी है, मन की जो मन का जो एक वेग है, वो धीरे धीरे से कम होने लगता है और फिर हरि नाम का आश्रय हम ले सकते हैं। तो भगवान के अर्चक विग्रह की सेवा और श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण, ये दोनों ही साथ साथ चलनी चाहिए। यदि हम सोचेंगे कि हम केवल हरि नाम लेंगे, मंदिर की आवश्यकता नहीं, विग्रह की आवश्यकता नहीं, विग्रह की सेवा की आवश्यकता नहीं है, हम केवल भागवत श्रवण करेंगे और हरि नाम लेंगे, तो प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं कि ये कलयुग के लोगों के लिए संभव नहीं है। नाम संकीर्तन करना, भागवत श्रवण भी अपने आप में कलयुग के लोगों के लिए मुश्किल है, तो सोचिए हरिदास ठाकुर के लिए भला ये संभव था, परंतु साधारण व्यक्तियों के लिए, असाधारण व्यक्तियों के लिए भी ये संभव नहीं है। जब दीक्षा ग्रहण करते हैं तो फिर अर्चक विग्रह की सेवा करने की योग्यता हम प्राप्त करते हैं, उन मंत्रों को आदि हम प्राप्त कर लेते हैं, परंतु दीक्षा नहीं भी हुई हो फिर भी कोई हानि नहीं है, आखिर हम आदेशों का पालन तो कर ही रहे हैं। इतना ही है कि अर्चक विग्रह की सेवा करने का अवसर हमें नहीं मिल रहा है। और फिर महाप्रभु कहने लगे, ए आज्ञा पान नाम लोई अनुक्षण, नाम लोईते मोर भ्रांत होइलो मन। तो ऐसे मेरे गुरु जी का आदेश मैंने स्वीकार किया और फिर मैंने जप करना तो प्रारंभ किया, परंतु ऐसे जप करते करते मेरा मन जो है थोड़ा भ्रमित होने लगा। धैर्य धोरिते नारी होइलाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाई जय छे मदनमत्त। फिर अद्भुत चीजें होने लगी मेरे अंदर। क्या क्या होने लगा? जब मैं हरि नाम का जप और कीर्तन करने लगा तो फिर दिव्य आनंद में कभी मैं हंसता, कभी रोने लगता, कभी नाचने लगता, कभी गाने लगता, एक पागल व्यक्ति की तरह मुझमें परिवर्तन होने लगे। और इस तरह से मैंने सोचा कि मैं तो पागल हो गया और मेरा सारा आध्यात्मिक ज्ञान इस पागलपन के कारण ढक गया है अभी। और क्योंकि मैंने अपने आप को पागल समझा तो मैंने जाके अपने गुरु महाराज के चरणों में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कीबा मंत्र दिला गोसाएं कीबा तारा बल, जपिते जपिते मंत्र करिलो पागल। के गोसाई जी, आपने किस तरह का मंत्र मुझे दिया? इस मंत्र का जप करते करते मेरा मन तो पागल हो गया, इसलिए कुछ उपाय बताइए। अभी जब मैं जप करता हूं तो मैं हंसने लगता हूं, गोरोने लगता हूं, नाचने लगता हूं, गाने लगता हूं। और जब मेरे गुरु महाराज ने यह सुना तो वो हंसने लगे और हंस के फिर कुछ महत्वपूर्ण उपदेश मुझे करने लगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की बातों को सुनकर उन्हें क्या आदेश दिया, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कल शाम यहाँ सने, कल शाम को तो गौर पूर्णिमा है तो कल सुबह इसकी चर्चा करेंगे, तो कल सुबह आप यहाँ पे क्लास कक्षा के लिए आ जाइए तो इसकी चर्चा करेंगे। ईश्वर पुरीपाद बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं हम सब के लिए। हरे कृष्णा। तो अब हम थोड़ी सूचनाएं हैं, उसके बाद दर्शन होंगे, दर्शन के बाद, दर्शन के समय कीर्तन होंगे।
हरे कृष्णा, श्री गौरांग महाप्रभु की। तो कल गौर पूर्णिमा महामहोत्सव है, श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस। इस उपलक्ष पर कार्यक्रम इस प्रकार है, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होगी और इतने विशेष दिन पर हम निवेदन करते हैं भक्तों से अधिक संख्या में कृपया आए और महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए मंगल आरती में भाग लें। 7:30 बजे दर्शन आरती होगी, 8 बजे से गौरंग महाप्रभु पर कथा होगी और कथा करेंगे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज। 9:30 बजे से 10:30 बजे भक्तगण नगर संकीर्तन करेंगे, तो सबसे अनुरोध है कृपया अधिक से अधिक संख्या में नगर संकीर्तन में भाग लें। साथ ही साथ शाम 5:30 बजे तक लगातार मंदिर में कीर्तन जारी रहेंगे, तो आप कीर्तन में भी भाग ले सकते हैं। 5:30 बजे से 6:30 बजे तक भगवान का अभिषेक दीक्षित प्रभु जी द्वारा होगा, तो इस पर कृपया ध्यान दें, केवल दीक्षित प्रभु जी 5:30 से 6:30 बजे तक भगवान का अभिषेक करेंगे, बाकी सभी लोग 6:30 बजे से 7:15 बजे तक भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। जो भी भक्त अभिषेक के लिए आएंगे, जो प्रभु जी है वो इनसे निवेदन है कृपया शुद्ध धोती कुर्ता कपड़ा में ही आए, और माता जी कृपया शुद्ध साड़ी में ही, तो प्रभु जी के लिए धोती और माता जी के लिए साड़ी यह अनिवार्य है। इसके बाद 7:15 बजे कथा होगी और कथा करेंगे परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, और 9:15 बजे भगवान की आरती होगी, इसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद। तो कल चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पर सभी से अनुरोध है कृपया उपवास रखें, और यह उपवास तोड़ने का समय है चंद्रमा का उदय, तो शाम को चंद्रोदय तक उपवास रखना है। अभिषेक के लिए जो सेवा सूची है वह विस्तृत सूची नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है, भक्तों से अनुरोध है कृपया अपनी अपनी सेवा देखकर समय पर सेवा करें। जो भक्त भगवान के लिए भोग बनाकर लाना चाहते हैं, 6:00 बजे तक भोग बनाकर ला सकते हैं। 28 तारीख को रामनवमी महामहोत्सव है, और इस उपलक्ष्य पर मंदिर में 3 दिन का राम कथा आयोजन किया गया है। यह राम कथा 26, 27 और 28 तारीख को 7:00 बजे से होगी, तो जिस तरह आप बड़ी संख्या में गौर पूर्णिमा कथा के लिए आए हैं, आपसे अनुरोध है और भी बड़ी संख्या में ये 3 दिन की राम कथा में भाग लें, और जो भी आपके मित्र हैं उन सबको भी इसके लिए बुलाएं। रामनवमी के दिन शाम को अभिषेक भी होगा, और इसकी जो विस्तृत कार्यक्रम है ये आपको बाद में बताया जाएगा। तो हमें यह सूचना देते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि श्रीमान नारायण गौरंग प्रभु ने एकादशी का प्रसाद पुरस्कृत किया है, और यह प्रसाद उन्होंने केवल एक एकादशी नहीं, आने वाले 1 वर्ष तक प्रत्येक एकादशी के लिए उन्होंने यह प्रसाद पुरस्कृत किया है। नारायण गौरंग प्रभु मंदिर के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत सेवा करते हैं, रथ यात्रा में उनका विशेष योगदान रहता है, और जो भी बड़े बड़े उत्सव नियमित रूप से वह मंदिर में प्रसाद पुरस्कृत करते रहते हैं, तो इस विशेष सेवा के लिए हम निवेदन करते हैं नारायण गौरंग प्रभु से कि वे आकर मंदिर की ओर से भेंट प्राप्त करेंगे। इन बार कृपया जोरदार हरि बोल से उनका पूजा रखें। हरि बोल। हम भगवान से निवेदन करते हैं नारायण गौरंग प्रभु पर कृपया अपनी कृपा बरसाए रखें, और साथ ही साथ आज का प्रसाद पुरस्कृत किया है श्रीमान विनय कडोलकर प्रभु और श्रीमान अशोक एम कोपरडे प्रभु, तो इन भक्तों से निवेदन है कृपया आगे आकर मंदिर की ओर से भेंट प्राप्त करें। विनय कडोलकर प्रभु, श्रीमान अशोक कोपरडे प्रभु या उनके परिवार से कोई सदस्य उपस्थित हो आकर कृपया भेंट प्राप्त करें। एक बार जोरदार हरि बोल से धन्यवाद करते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो जो भी गौर पूर्णिमा के लिए और भी जो अन्य सेवाएं हैं उन सब के को पुरस्कृत करने के लिए स्पॉन्सरशिप के लिए आप कृपया नारायण गौरंग प्रभु से संपर्क कर सकते हैं। प्रसादम के अलावा और भी कई तरह की सेवाएं होती हैं, जैसे मंदिर की सजावट आदि, तो आप कृपया करके नारायण गौरंग प्रभु से कोई भी तरह की लक्ष्मी योगदान के लिए संपर्क करें। कीर्तन होगा और उसके बाद महाप्रसाद,
तो कृपया अभी भगवान के विग्रह की ओर आप देखिए, घूम जाइए, जहां बैठे हैं वहीं पर बैठ के आप घूम जाइए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Gokula Nanda, Radha Gokula Nanda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jagannatha, Jaya Jagannatha, Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jaya Prabhupad, Prabhupad, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribol, 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 Nitai Gaura Haribol.
श्री हरि नाम संकीर्तन की जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।